दानियेल दूसरा बाब। और नबुकदनस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म किया कि फालगीरों को और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर एरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे, लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादिमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूं, लेकिन अगर तुम मुझको जवाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। पस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रुए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो, और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियेल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। तब दानियेल ने बादशाह के जलौदारों के सरदार अर्योक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिर्दमंदी और अकल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलौदारों के सरदार अर्योक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अर्योक ने दानियेल से इसकी हकीकत कही और दानियेल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। तब दानियेल ने अपने घर जाकर हेननिया और मेसाइल और उजरिया अपने रफीकों को इतला दी, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियेल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियेल ने कहा, खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं, ए मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। पस दानियेल अर्योक के पास गया, जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकरर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना करे, मुझे बादशाह के हजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। तब अर्योक दानियेल को शताबी से बादशाह के हजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियेल से, जिसका लकब बेलतशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियेल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबुकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अय्याम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं, ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों को खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई, और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सिर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उनका शिकम और उनकी राने तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया, और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा, और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए, और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई यहां तक कि उनका पत्ता ना मिला, और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूं। ऐ बादशाह, तू शहंशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहां कहीं बनी आदम सकूनत करते हैं, उसने मैदान के चिरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है, और सोने का सिर तू ही है, और तेरे बगैर एक और सल्तनत बरपा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हां जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तफ़रका हो गया। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आम ही खाता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मिल न खाएंगे। और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बरपा करेगा जो ताबद नेस्त ना होगी, और उसकी हकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वो ही अब तक कायम रहेगी। जैसा कि तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो जो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है। तब नबूकदनज़र बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवाई बख्शी, और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की, और उसने सदरक और मेसिक और अबदनजू को बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुकरर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा।